धौला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम चुथात्मने नमः, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वर्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्, तिहुवन शिरसे हरये भवभयगभ्भादुनिकदेपणम्, सिद्धे जीवठाण समलिन गुणचूलियम होच्छम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। उसमें जीवस्थान नामक प्रथम खंड चल रहा है और हम अभी चूलिका का प्रकरण देख रहे हैं। छठवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 91 पर हम आगे 91। थोड़ा हम विषय क्या चल रहा था उसको देखते हुए आगे आएंगे, बहुत बड़ा गैप हो गया ना बीच में। तो हम बंध स्थानों की चर्चा कर रहे थे, ये पेज नंबर 80 से बात चालू हो गई थी, 80 वहां से निकालो। स्थान समुत्कृतना इसको कहते हैं, यानी स्थानों की बात यहाँ बताएंगे। स्थान कहने से उसमें बंध स्थान भी होते हैं, उदय स्थान भी होते हैं, सत्व स्थान भी होते हैं। तो उसमें से यहाँ ये जो कितने प्रकृतियों का बंध है, नंबर ऑफ प्रकृतियां, और उसके जो वेरिएशंस हो गए उसको स्थान कहेंगे। जैसे ज्ञानावरण की पांचों पांच बनती रहती, पहले गुणस्थान से लेकर दसवें गुणस्थान तक, तो उसका पांच प्रकृति का एक ही स्थान है। और वो किसमें बताना है, तो मिथ्या दृष्टि, साधारण समय मिथ्या दृष्टि, असंयत समय दृष्टि, संयता संयत और संयत। संयत कहने से छठे से आगे जहाँ जो योग्य है वहां तक समझना। इस तरह इनके स्थानों की चर्चा अभी चलेगी। उसमें ज्ञानावरण का एक ही स्थान है जहाँ पांचों ही प्रकृतियां बनती है, और वो पहले गुण स्थान से लेकर दसवें तक बनती है। यानी उसका उस बंध की अपेक्षा उसका एक ही भाव है सभी गुणस्थानों में। अब उसके बाद दर्शनावरण के कितने देखे थे याद है? 9 प्रकृतियां हैं, उनके स्थान 3 स्थान, जहां 9 प्रकृतियां बनती है। कहां बनती है? पहले और दूसरे में बनती है। उसके बाद 6 प्रकृतियां बनती है, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें के पहले भाग तक। उसके बाद 4 प्रकृतियां बनती है, यानी बंध स्थान 3, 9 वाला बंध स्थान, 6 वाला बंध स्थान और 4 वाला बंध स्थान। ये दर्शनावरण की देखी थी। अभी उसके बाद हमने वेदिनी की बात देखी थी। पृष्ठ संख्या 91 से शुरू होगा, परंतु अभी हम बंध स्थानों की रिवीजन देख रहे थे कि ज्ञानावरण का बंध स्थान 5 प्रकृतियों का एक है, दर्शनावरण के 3 बंध स्थान है, 9 का एक, 6 का एक और 4 का एक। उसके बाद वेदनीय की बात हम देखेंगे। तो वेदनीय एट ए टाइम तो एक ही बनती है, या तो साता बंधेगी या असाता, यानी वो एक ही प्रकृति बनती है। कहां से कहां तक बनती है? तो पहले गुणस्थान से लेकर संयोगी तक, 13वें गुणस्थान तक वेदनीय बनती है। हाँ, उसमें जो ऑप्शन जो है साता या असाता, वो छठे तक है। छठे के बाद असाता का बंध नहीं है, साता का बंध है, सातवें से लेकर आगे तक। उसके बाद मोहनी कर्म के बंध स्थानों की चर्चा अपनी चलेगी। अभी ये बात 88 पेज से शुरू हुई थी, मोहनीय के बंध स्थान। तो उसमें कितनी प्रकृतियां बनती है उसकी संख्या बताएंगे। तो 22 प्रकृति वाला स्थान है, 21 का है, 17 का है, 13 का है, 9 का है, 5 का है, 4 का है, 3 का है, 2 का है और 1 का है। अब उसकी बात यहाँ बताएंगे कि जो 22 वाला जो स्थान है, 22 प्राकृतिक बंध स्थान, बंध स्थान कितने, तो 10 है, तो उसमें से एक बंध स्थान 22 प्रकृतियों वाला है, जिसको 22 प्राकृतिक बंध स्थान कहेंगे, वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में होता है। वो 22 प्रकृतियां कौन सी होती है, तो मिथ्यात्व 16 कषाय और भय जुगुप्सा, ये तो ध्रुवबंधी है, तो उसके दो बंध ही रहे। और उसके बाद जो 9 कषाय जो है, उसमें से भय जुगुप्सा का तो हमने ले लिया, अब 7 रह गए, 7 में प्रतिपक्षी है, 3 वेदों में से 1 वेद और 2 युगल है, हास्यरति या आरति शोक, उसमें से 1 युगल। इस तरह से भय जुगुप्सा निरंतर, इन्हें ध्रुवबंदी उसको कहते हैं, यानी 1 वेद, 1 युगल और भय जुगुप्सा। इस तरह से 9 कषाय जो कर्म है उसमें 5 का बंध होता है, यानी 1 मिथ्यात्व, 16 कषाय और 5 नौ कषाय। ये 22 प्रकृतियों वाला स्थान हमने देखा था 89 पेज पर। हाँ ना, मोहनीय नहीं, 22 वाला प्रकृति स्थान, मोहनीय का बंधन ऊतक है, मोहनीय का, अगर मोहनीय कर्म की प्रकृति के बंध स्थान देखेंगे तो 1 वाला स्थान वो कहाँ तक है, 9वें गुण स्थान के लास्ट में, क्योंकि 9वें गुण स्थान के शुरुआत में 1 यानी पुरुष वेद और 4 कषाय बन रहे, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, उसके एक एक भाग में फिर वेद का बंध मिट जाता है, फिर क्रोध का, फिर मान का, फिर माया का, और लास्ट में अकेले लोभ का बंध है 9वें के लास्ट में। और उसके बाद 10वें में सूक्ष्म लोभ का उदय है परंतु बंध नहीं है, यानी मोहनीय का बंध कहेंगे तो मोहनीय का बंध जो है वो मोहनीय ही सच, दर्शन मुनि का नहीं कहा, दर्शन मुनि का एक मिथ्यात्व का ही बंध है और वो पहले गुणस्थान में है। तो मोहिनी पूरी एक प्रकृति की बात करेंगे मोहनी की, तो कहेंगे पहले से 9वें तक उसका बंध है। उसके बंध स्थानों की चर्चा है, तो 22 वाला स्थान तो पहले ही गुणस्थान में है। अब यहाँ हम 91 पेज पर, यहाँ जो ऊपर का सूत्र पढ़ा था 23 नंबर का, उसका भी अर्थ देखते हैं। अभी 22 वाला देख लिया हमने, अब 21 वाला बंध स्थान, 21 वाला बंध स्थान दूसरे गुणस्थान में होता है, वहाँ मिथ्यात्व का बंध नहीं है, और 3 वेदों के ऑप्शन जहाँ थे उसमें से नपुसक वेद अभी नहीं बंधेगा, स्त्री वेद या पुरुष वेद में से 1 बंध होगा। 91 पेज। तो यह हो गई बात दूसरे बंध स्थान के। अब हम 24 नंबर का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक तो हमने रिवीजन देखे, पेज नंबर 91, 24 नंबर का सूत्र। 16 कसाया इत्थि वेद पुरुष वेदो दोनम वेदानम एकदरम हस्सरदि अरदि सोग दोनम जुगलानम एकदरम भयदुगुंछा एदासीम एक विषाय पैडीनम एकम्मी चेवठानम बंधमानस। कहते अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, अभी मिथ्या तो को नहीं लिया, स्त्री वेद वो स्र नहीं, स्त्री चाहिए, स्त्री वेद और पुरुष वेद, इन दोनों वेदों में से कोई एक वेद, मिथ्या दृष्टि को तीनों ही वेद अल्टरनेटली हर अंतर्मुहूर्त में बनते ही रहते हैं। अभी ऐसा नहीं समझना, वो तो भोग भूमि वाले मिथ्या दृष्टि को नहीं बंधेंगे, उसकी बात छोड़ दो, परंतु बनता रहता है, इन जनरल कथन हम कहेंगे तो। हास्यरति और अरति शोक इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा इन 21 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है, वो भाव यानी 22 प्रकृति का बंध करने वाला एक भाव कहलाता है, एक एक बंध का स्थान का एक एक भाव कहते हैं। हमने ज्ञानावरण में क्या देखा था, ज्ञानावरण के बंध की अपेक्षा पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक एक ही भाव है। आप कहेंगे 10 गुणस्थानों के इतने भेद पड़े ना, हाँ वो अन्य मोहिनी की अपेक्षा है, ज्ञानावरण के बंध की अपेक्षा जो भाव होगा वो वही का वही है। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। एक विषय यह संबंध में षष्ठी विभक्ति है, यानी 21 प्रकृतियों का, वो षष्ठी विभाग लगे का लग गया, इन प्रकृतियों का एक में ही अवस्थान है ऐसा कहने पर 21 प्रकृतिक बंद स्थान में अवस्थान होता है ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए, अथवा 21 प्रकृतियों के बंध योग्य परिणाम में अवस्थान होता है, बंध स्थान में अवस्थान होता है, उस परिणाम में अवस्थान होता है, इसे उन्होंने दो अर्थ उसमें से निकाले, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर उक्त दोनों वेद और हास्यादि दोनों युगलों के विकल्प से चार भंग होते हैं। आपको लक्ष्मी बहन पहले गुण स्थान में कितने भंग हो सकते थे? 22 प्रकृति का स्थान तो एक ही है, प्रकृति तो 22 ही है, परंतु प्रकृतियों के बदलने से भंग कौन कौन से हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन कौन से हो गए 22? हाँ कौन से 6 कौन से, यानी 6 कैसे बने वहां पर? देखो यहाँ क्या देखा, नहीं 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 ऐसा नहीं लेना, देखो वो तो फिक्स है ना, 22 में तो उनका तो फिक्स है, मिथ्या तो 16 कषाय बहिजुगुप्सा तो फिक्स है, तो भंग किससे पड़ेंगे जो बदलने वाली है वो? देखो 3 वेद और 2 युगल, 3 × 2 = 6, यहाँ कैसे लिया 2 वेद और 2 युगल, 2 × 2 = 4, समझ में मत, ये कैसे किया उन्होंने, ये पेज नंबर 90 पर हमने देखा था ना कैसे होते हैं, परंतु हम अपनी भाषा में समझेंगे। देखो वहां तो मिथ्या तो 16 कषाय भय जुगुप्सा तो फिक्स है, सबके लिए वे की वे है, डिफरेंस कहाँ हो सकता है 3 वेदों में और 2 युगलों में, इसे 3 × 2 = 6 हो जाते हैं, 6 भंग कहेंगे, संख्या तो 22 की 22 फिक्स। यहाँ पर दूसरे गुण स्थान में 21 वाला है, परंतु यहाँ पर भी स्त्री या पुरुष वेद और हास्यरति या शोकरति, इन 2 × 2 = 4, ये 4 भंग कहलाते हैं। स्थान तो वो 21 प्रकृतियों वाला हुआ और उसमें प्रकृतियां बदलने से उसके भंग हो जाते हैं, वो किसके होता है वो बता रहे हैं। पेज नंबर 92, तम शासन सम्मादिष्ठिस्स, वह 21 प्रकृतिक द्वितीय बंध स्थान सासादन सम्यक दृष्टि के होता है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान से आगे अनंतानुबंधी चतुष्क और स्त्री वेद का बंध नहीं होता, इससे आगे नहीं होता तो आगे उसकी संख्या कम हो जाएगी, आगे तो अनंतानुबंधी के 4 बिट जाएंगे तो आगे वाला 21 के बाद 17 वाला मिलेगा, और वहां स्त्री वेद का बंध नहीं होगा परंतु पुरुष वेद का होगा, इसलिए संख्या 17 ही रहेगी। पहले गुणस्थान में 3 वेद में से था, दूसरे गुणस्थान में 2 वेद में से 1, अभी तीसरे और आगे के गुणस्थानों में 1 पुरुष वेद ही बंधेगा। तो यहाँ क्या है, वह 21 प्रकृतिक द्वितीय बंध स्थान सासादन समय दृष्टि के होता है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान से आगे अनंतानुबंधी चतुष्क और स्त्री वेद का बंध नहीं होता, और इसका भी कारण यह है कि आगे के गुणस्थानों में अनंतानुबंधी कषायों के उदय का अभाव है तथा कारण के बिना कार्य संभव नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर विरोध आता है। कारण के बिना कार्य नहीं, यहाँ तो निमित्तों की अपेक्षा बताएंगे, पर जीव के वैसे परिणाम नहीं है तभी वो निमित्त भी वहां नहीं है, ऐसा कहा है तो हम कहेंगे कर्म की ओर से, पर जीव का ऐसे भाव नहीं है तो अनंतानुबंधी उसके कषाय भी नहीं है और उसके निमित्त से बंधने वाला वहां स्त्रीवेद भी वहां नहीं होगा, अनंतानुबंधी के उदय में ही अनंतानुबंधी बनते हैं, एक बात, और जब तक अनंतानुबंधी का उदय तभी वो स्त्रीवेद भी बनेगा, उसके आगे नहीं है, और प्रत्याख्यान उसका उदय है वहां पुरुष वेद बन रहा है। आगे बढ़ते हम 26 नंबर का सूत्र, तथ्य इमं सत्तरसन्नम ठानम अनंतानुबंधी कोहमान माया लोभम इथ्य वेदम वज्र, मुनि कर्म संबंधी उक्त 10 बंध स्थानों में, ये 10 बंध स्थान याद है ना, 22 वाला, 21 वाला, 17 वाला, 13 वाला, 9 वाला, फिर 5, 4, 3, 2 और 1, ये 10 बंध स्थान है, उसमें से अभी हम तीसरा नंबर को बताएंगे। तो 10 बंध स्थानों में द्वितीय बंध स्थान की 21 प्रकृतियों में से, अभी उसमें से कौन से नहीं बंधेगी वो बता रहे, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और स्त्री वेद को छोड़कर, उस तरह हुआ स्त्री वेद को छोड़कर यह 17 प्रकृतिक तृतीय बंध स्थान होता है। पूर्व सूत्रोक्त 21 प्रकृतियों में से अनंतानुबंधी चतुष्क के निकाल देने पर 17 प्रकृतियां होती है। यह सूत्र व्यतिरेक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए कहा गया। व्यतिरेक यानी क्या डिफरेंस है, दूसरे और तीसरे बंधस्थान में क्या डिफरेंस है वो बताएंगे। तो व्यतिरेक हुआ उसका, 21 में और 17 में डिफरेंस कौन से नहीं है, अनंतानुबंधी और स्त्रीवेद नहीं है। क्या क्या है हम पढ़ने के पहले आप बता सकते हैं क्या क्या है, कौन कौन से 17 वाले में क्या क्या बन रहा है? 12 कषाय, क्योंकि ना मिथ्यात्व ना अनंतानुबंधी, तो 12 कषाय हो गए। हाँ, पुरुष वेद ही बन रहा है। हाँ, और बैजू गुप्सा तो ध्रुवबंदी है ही है। हाँ, और एक युगल बंधेगा कोई भी, भंग कितने हो गए? हास्यरती या शोकरती दो हो जाएंगे, दो भंग हो गए ना, किसी को हास्यरती बन रही किसी को शोकरती बन रही। वेद अभी पुरुष वेद का ही बंद है, भय जुगुप्सा तो ध्रुवबंदी है। देखो अभी हमने पढ़ने के पहले थोड़ा देख लिया ना, अभी पढ़ेंगे उसको। 27 नंबर का सूत्र, बारस कसाय वो वारस हुआ, बारस कसाय पुरुष वेदो हस्सरदि अरदि सोगम सोग दोन्नम जुगलाणम एकदरम भय दुगुंचा एदासी सत्तरसन्नम पयडीनम एकम्मि चेवठानम बंधमानस्य। कहते अप्रत्याख्यानावरणीय आदि 12 कषाय, यानी अप्रत्याख्यानावरण के 4, प्रत्याख्यानावरण 4 और संज्वलन 4। तो ये 12 कषाय हुए। पुरुष वेद हास्य रति और अरति शोक, इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल, यानी दो ऑप्शंस हुए ना, इसलिए दो भंग हो जाएंगे। और भय और जुगुप्सा, इन 17 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। शंकाकार पूछते किसमें अवस्थान होता है, यानी किसमें उसके वो एक ही उसमें रहता है, किस भाव में रह रहे हैं। उसका समाधान, 17 संख्या एक एक स्थान में अथवा इन 17 प्रकृतियों के बंध योग्य जीव के परिणाम में उनका अवस्थान होता है। यानी 17 संख्या वाले स्थान में अवस्थान है कहो, या 17 का बंध करने वाले जीव के परिणाम में उसका अवस्थान है कहो, दोनों ही बातें वही एक ही एक एक क्यों कह दिया, एक कम ही 17 संख्या इधर से एक ही चाहिए, एक एक नहीं चाहिए, 17 संख्या एक कम ही है, एक ही चाहिए। 17 एक कम ही 17 संख्याए, एक्चुअली ऊपर कैसे बताया था हमने, अवस्थान होता है ना एक विषय, एक में ही अवस्थान होता है ऐसा, एक में ही। हाँ, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था ना, अवस्थान होता है पहले दूसरे गुणस्थान के लिए, एक कम्मी चेव ऐसा बताया था उन्होंने, एक कम्मी चेव ठानम बंधमानस, 21 नंबर के 21 समय के एक ही भाव में अवस्थान होता है ऐसा लिखा है। दूसरे गुणस्थान के लिए भी ऐसा ही होता है, एक कम्मी चेव ठानम बंधमानस 24 में एक ही भाव में अवस्थान होता है, वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए था। हाँ, 17 संख्या वाले एक ही स्थान में क्या लिखा है उसमें, क्या आपका वाक्य क्या,
उस 17 संख्या में अथवा उस 17 प्रकृतियों के
देखो हम ऐसा कहेंगे 17 संख्या वाले एक ही स्थान में, ये ज्यादा बराबर होते हैं। 17 संख्या वाले एक ही स्थान में अथवा इन 17 प्रकृतियों के बंध योग्य जीव के परिणाम में उनका अवस्थान होता है, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर हास्यादि दोनों युगलों के विकल्प से दो भंग होते हैं, यानी किसी को हास्य रति का बंध है, किसी को शोक रति का बंध है। हाँ, 93 पेज पर आ गए अभी हम। 28 सूत्र तम, अब वो किसको होता है वो बताएंगे। सम्मा मिच्छा दिठिस वा असंजद सम्मा दिठिस वा, वह 17 प्रकृतिक तृतीय बंध स्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि के होता है, क्योंकि इनको अनंतानुबंधी का बंध नहीं है, तीसरे वाले को भी नहीं है और स्त्रीवेद का भी बंध नहीं है, तो तीसरे में भी मोहिनी की अपेक्षा उतना ही है 17 और चौथे वाले को भी 17 का बंध है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मोहिनी के बंध की अपेक्षा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, मोहिनी के उदय की अपेक्षा कहेंगे तो एक को तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, दूसरे को औपशमिक होगा, क्षायिक होगा या सम्यक प्रकृति वाले उदय वाला वेदक होगा, तीन ऑप्शन वहां हो गए मोहिनी की अपेक्षा। यह बंध की अपेक्षा बात चल रही है, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय चतुष्क का बंध नहीं होता, क्योंकि 17 के बाद एकदम 13 वाला स्थान हो जाएगा। और इसका भी कारण यह है कि वहां पर स्वोदय ने अपने उदय अर्थात अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव है। ये जो अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण संज्वलन है, वो अपने उदय में बंधने वाली है। मिथ्या तो भी इसको कहते हैं स्वोदय में बंधने वाली प्रकृतियां, अपना उदय होते हुए बंध हो रहा है। अब पुरुष वेद का ऐसा नहीं है, अभी स्त्रीवेद के उदय में भी पुरुष वेद का बंध हो सकता है, नपुसक वेद के उदय में भी पुरुष वेद का बंध हो सकता है, वो स्वोदय ही नहीं है। ये मिथ्यात्व और 16 कषाय कैसे अपने उदय में बंधने वाली प्रकृतियां है, उसको स्वोदय कहते हैं। तो अप्रत्याख्यानावरण के कषाय का उदय का अभाव है किसमें, पांचवे वगैरह आगे, इसलिए उसका बंध भी नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि ये दोनों गुणस्थान इस 17 प्रकृतिक बंध स्थान के स्वामित्व को प्राप्त होते हैं, यानी उसके बंध की अपेक्षा दोनों में समानता है। ये समझ में आ रहे हैं ना, वैसे सरल है बातें, और इसमें गुणस्थानों का भी स्वरूप ख्याल में आ जाता है, कहाँ कितने कौन कौन से प्रकृतियां बनती है। 29 तथ्य इमं तेरसन्नम ठाणम, ऐसा कैसा कुछ रह गया, अच्छा कौन सी नहीं होती वो बता रहे। तथ्य इमं तेरसन्नम ठाणम अपच्छ खानावरणीय कोधमान माया लोभम वज्ज, तेरसन्नम ठाणम नहीं चाहिए, 17 वाला होना चाहिए। इमं तेरसन्नम ठाणम, अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ ये 13 का ठान है अप्रत्याख्यानावरण को वर्जित करके, पहले उन्होंने इत्यादि ठीक है इनकी बराबर उन्होंने क्या किया था, 21 में से माइनस करके वो ये होता है, ऐसा उन्होंने कथन किया। यहाँ 17 में से ये माइनस करके वो 13 का होता है, इस तरह से उनको बताना है। हाँ, ये स्व पर उदय ऐसा भी होता है, कितनी प्रकृति यानी अकेले परोदय ऐसा नहीं कहेंगे उसको, स्व पर उदय में जैसे पुरुष वेद का बंध, पुरुष वेद के उदय में भी बंधेगा, स्त्री नपुसक वेद के उदय में भी बंधेगा, वो स्वपर उदय वाली होगी। ऑन करना, आवाज नहीं आ रही।
हाँ, यहाँ कोध लिखा है, कोध, कोध मान माया 29 में,
29 में
और 26 में कोह मान माया लिखा है।
कोध मान माया, कोह मान माया
और 26 में कोह लिखा है, राइट कौन सा?
कभी कभी क्या है उसमें दो दो शब्द आते, थोड़े आगे और भी देखना पड़ेगा, देख लेते को है कि कोध भी हो सकता है। आगे आएगा ना पांचवे के लिए, आगे नेक्स्ट देखो, चखाना कोह मान माया, कोह लिखा है वहां पर, कोह शब्द आ रहा है उसमें, क्या है आपके उसमें? नहीं नहीं उस ऊपर कोह है कि कोध है? क्रो नहीं होगा, को होगा, ठीक है, हो सकता है कि कोध भी आता होगा। है कि नहीं है पता नहीं है, अन्यत्र कोह लिया है उन्होंने, नहीं पर आता है संजलन में, देखो 97 पर कोध संजलन लिखा है, यानी वो बराबर है, वहां कोध लिखा है, यानी दोनों ही आते, कोध और कोह दोनों ही आते। देखो 29 हम अभी हमने प्राकृत में पढ़ा था, उसका हिंदी पढ़ते हैं। मोहनीय कर्म संबंधी उक्त दश बंध स्थानों में तृतीय बंध स्थान की 17 प्रकृतियों में से अप्रत्याखानावरणीय क्रोध मान माया और लोभ को छोड़कर यह 13 प्रकृतिक चतुर्थ बंध स्थान होता है। यानी अभी आगे का बंध स्थान बता रहे, वो किसके होता है वो अब बताएंगे। वज्ज ऐसा कहने पर वज्जी अर्थात छोड़कर ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए, शेष सूत्रार्थ सुगम है। यानी क्या छोड़कर आगे का स्थान होता है वो बता रहे हैं, फिर वो गिनाएंगे हमें। पूर्वोक्त 17 प्रकृतियों में से अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय चतुष्क को घटा देने पर 13 प्रकृतियां होती है। वे 13 प्रकृतियां कौन सी है इस प्रकार भक्ति से पूछने पर, शिष्य विनय से पूछ रहा है ये कौन सी है, भक्ति से पूछने पर उस शिष्य के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं, उत्तर नेक्स्ट सूत्र उसके लिए बताएंगे। अथवा पहले अनुमान से जिस 13 प्रकृतिक अर्थ को जाना है उसी के दृढ़ीकरण के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। यानी हम तो एक एक को निकालते निकालते हमने आगे का बताया, परंतु वो है कौन सी उसको भी हम रिपीट कर रहे हैं। 94 पृष्ठ पर आते हैं, यानी वो 13 प्रकृति का स्थान हमने देखा था, वो तो 17 का देखा था, उसमें से और 4 निकल गए, तो कौन से रह गए, तो 13 वाला, वो किसके होगा, कौन से गुणस्थान वाले को? तीसरे और चौथे में 17 का था, तो ये 13 वाला किसको होगा? पांचवे वाला, पांचवा वो प्रत्याख्यान और जाएगा ना, तो उसके 9 का रह जाएगा, 9 रह जाएगा, तो ये पांचवा वाले को ये इतने बनती है। कौन कौन से वो बता रहे? 8 कषाया, 8 कषाय का तो बंद रुक गया, अनंत आनंद प्रत्याख्यान नहीं रहे, पर बंधने वाले कौन से है? प्रत्याख्यान और 4 और संज्वलन 4। पुरी सवेदो हस्सरदि अरदि सोग दोन्नम जुगलाणम एक्कदरम भय दुगुंछा एदासीम तेरसन्नम पैणिनम एक्कमी चेवठाणम बंध मानस। प्रत्याख्यानावरणीय 8 कषाय आदि 8 कषाय, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। पुरुष वेद हास्यरति और अरति शोक, इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल। भय और जुगुप्सा, इन 13 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। शंका, किस एक में अवस्थान होता है? उसका समाधान, 13 संख्याक, संख्या कहने संख्या वाली, वहां डबल एक हुआ था ना, वो संख्याक चाहिए था, 13 संख्याक एक स्थान में। तो ये हमने वाला निकाला, वहां पर 13 संख्याक एक स्थान में अवस्थान होता है, संख्या क वहां चाहिए था, हमने वाले कर दिया, ठीक है, संख्या एक हुआ ना, वो संख्याक चाहिए था। यानी 17 संख्या के एक स्थान में अवस्थान होता है। ये दो बार एक एक क्यों हुआ? तो उसको केवल संख्या ऐसा लेना था। वो पेज नंबर 94, दूसरी शंका, 13 प्रकृतियों के एकत्व कैसे संभव है? उसका समाधान, 13 इस संख्या सामान्य की अपेक्षा 13 प्रकृतियों के एकत्व संभव है। यानी 13 प्रकृतियों वाला वो संख्या उनमें समान है, किसी के हास्य रति बन रही, किसी के शोक रति बन रही है। अथवा 13 प्रकृतियों के बंध योग्य परिणाम में उक्त 13 प्रकृतियों का अवस्थान होता है, इस अपेक्षा से उनके एकत्व बन जाता है, शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर हास्यादि दोनों युगलों के विकल्प से दो भंग होते हैं। विकल्प ने उसको हास्यरति के बदले शोकरति बंधेगा, तो ऑप्शनल है। अब वो किसको होता है ये स्थान, वो बताएंगे। तम संजदा संजदस्य उक्त 13 प्रकृतिक चतुर्थ बंध स्थान, वो घ हुआ है, उसका ध करना, संयता संयत के होता है, क्योंकि पंचम गुणस्थान से ऊपर प्रत्याख्यानावरणी कषाय चतुष्क का बंध नहीं होता है। और इसका भी कारण यह है कि ऊपर के गुणस्थानों में प्रत्याख्यानावरणीय कषाय के उदय का अभाव है, इसलिए 13 प्रकृतिक बंध का स्थान का स्वामी संयता संयत ही होता है। अब 32 नंबर, तथ्य इमम नवन्नम ठाण के ठाणम, ठाणम चाहिए ना, हम अभी तक ठाणम देखे है ना, पंचन्नम ठाणम, ठाणम है ना आप में, हाँ, तो उन्होंने करेक्शन कर दिया है, ठाणम। पच्चक खानावरणीय कोह माण माया लोहम वज्ज, ये लोभम करने की जरूरत नहीं, लोह भी होता है ना, अभी हमने कोध और कोह दोनों देखे थे, उसमें क्या है, लोह है के लोभ, लोभम है ना, हमने उसको लोभम किया था लास्ट टाइम। संज्वलन में क्या लिया, लोभ, लोभ, हमने लास्ट टाइम सुधारा था, लोभम किया था उसको। लास्ट हमारे 32 को नीचे पढ़ना है, लोभम वज्ज लिखा था ना, लोभम वज्ज, हाँ यहाँ को है। मोहनीय कर्म के उक्त 10 बंध स्थानों में चतुर्थ बंध स्थान की 13 प्रकृतियों में से प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया और लोभ कषाय को छोड़ने पर यह 9 प्रकृतिक पंचम बंध स्थान होता है। पहले 4 बंध स्थान कौन से देखे, 22 वाला, 21 वाला, 17 वाला और 13 वाला, अब 9 वाला बता रहे, पांचवा। 95 पेज पर आते हैं, पूर्वोक्त 13 प्रकृतियों में से प्रत्याख्यानावरणीय कषाय चतुष्कों को घटाने पर 9 प्रकृतियां होती है। व्यतिरेक मुख से, व्यतिरेक ने कौन से नहीं ये बताना है, व्यतिरेक एक होता है अन्वय ने, वही का वही कंटिन्यूएशन, व्यतिरेक ने वो नहीं है, तो इसमें क्या डिफरेंस है वो बताएंगे, क्या नहीं है वो बता रहे, इसको कहते हैं व्यतिरेक मुख से नव प्रकृतिक बंध स्थान को निरूपण करके यानी क्या नहीं है वो बता दिया। अब कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक से वस्तु का निर्णय होता है। इस न्याय के अनुसार वस्तु का निर्णय करने के लिए उसमें क्या वही का वही है और क्या दूसरा डिफरेंस है वो दोनों ओर से बताते हैं। इसलिए अन्वय मुख से उसी स्थान को निरूपण करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। अन्वय रूपेण जो पहले भी थी और अब भी नव वाले स्थान में भी बंधेंगे वो प्रकृतियों का नाम यहाँ बताएंगे। अब ये कौन सी है वो बताएंगे, उत्तर सूत्र उसके लिए बता रहे। चदु संजलना पुरुष वेदो हस्तरदि अरदि सोग दोन्नम जुगलाणम एकदरम भय दुगुंचा एदासिम नवन्नम पैडीनम एकम्मि चेवठाणम बंध मानस। चारों संज्वलन कषाय पुरुष वेद हास्यरति और अरति शोक इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल, भय जुगुप्सा इन नौ प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। तो मेरा ये सवाल है ये प्रकृतियां किसके बंधेगी, पांचवे के ऊपर है ना, किस किस को, पांचवे के ऊपर बहुत गुण स्थान है। छठे वाले को, सातवें वाले को अरति शोक नहीं बंधेगी, यानी उसमें दो विकल्प नहीं होंगे, दो भंग नहीं होंगे, एक ही भंग हास्य रति बंधेगी, शोक अरति का बंध विच्छित्ति हो जाएगी ना। हास्य रति क्या कहते हैं, बंध विच्छित्ति अंत में है तो आठवें में बंधेगी, आठवें तक बनती है लास्ट उसके भाग तक। अभी हम पढ़े छठे में ही हास्य रति और अरति शोक दोनों बनती है, डिफरेंस जो ये या वो कहाँ तक, छठे तक। सातवें वाले को हास्य रति ही बंधेगी, दोनों नहीं 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 दो युगलों में से एक युगल लेते थे, हास्य और रति मिलकर दो प्रकृतियों का एक युगल है ना, दो, हाँ समझ में ना। नहीं 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 हास्य रति बंधेगी या शोक रति बंधेगी, उसको एक युगल कहा था। अच्छा हुआ पूछ लिया। देखो हम 33 नंबर का सूत्र हिंदी में पढ़ते, देखो चारों संज्वलन कषाय पुरुष वेद हास्य रति और अरति शोक इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल, एक युगल ने एक जोड़ी, भय और जुगुप्सा इन नौ प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। इस सूत्र का अर्थ सुगम है, यहाँ पर हास्यादि दोनों युगलों के विकल्प से दो भंग होते हैं, वो किसको होता है वो बताएंगे। तथ इमं पंचन्नम ठाणम हस्यरदि अरदि सोग भय दुगुंचम वज्ज। नहीं मैंने आगे का सूत्र पढ़ा, सॉरी 34 का पढ़ना था। तम संजदस्य वह नव प्रकृतिक पंचम बंध स्थान संयत के होता है, इन्होंने इतना ही कह दिया, अब उसकी विशेष बताएंगे विशेषता। नौ हाँ उनका नौ प्रकृति उनके बनती है, पर उसमें भंग किसके हो गए, तो छठे के दो भंग हो गए, सातवां आठवें का एक ही भंग होगा। तो संयत के ऐसा सामान्य पद कहने पर प्रमत्त संयत से लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान तक के संयतों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर छह नौ कषायों का बंध नहीं होता। एक वेद का बंध होता है पर छह नौ कषायों का वहां पर बंध ऊपर नहीं होता, एट ए टाइम छह नहीं बनते हैं परंतु उनका बंध ऊपर नहीं है, इसलिए वहां पर नौ प्रकृतिक रूप बंध स्थान का होना संभव नहीं है। यहाँ इन्होंने केवल नौ प्रकृति का बंध स्थान इतना ही लिया है और उसके भंग देखने के छठे के लिए दो भंग है, सातवें और आठवें के लिए हास्य रति वाला एक ही भंग है, उसकी चर्चा यहाँ उन्होंने नहीं की है, क्योंकि केवल नौ का एक इतना ही लिया, छठे में दो भंग और सातवें आठवें में एक भंग हास्य रति वाला। अब 35 नंबर का सूत्र कहे। तथ इमं पंचन्नम ठाणम हस्यरदि अरदि सोग भयद गुंचम वज्ज। मोनीय कर्म संबंधी उक्त दश बंध स्थानों में पंचम स्थान की नौ प्रकृतियों में से हास्यरति अरति शोक भय और जुगुप्सा को छोड़कर यह पांच प्रकृतिक छठा बंध स्थान है। यानी देखो सातवें आठवें के लिए हास्यरति और भय जुगुप्सा बंध रहते चार, आठवें के अंत तक वो बनती है, फिर उसके बंध की विच्छुत्ति कहलाती है। अब बंध रुक गया, नवे में उनका बंध नहीं है, तो नवे के पहले भाग में पुरुष वेद बंध रहा है और चार संज्वलन बंध रहे, इसलिए यहाँ कहते हैं कौन कौन से है वो बता दिए उन्होंने, कौन से छोड़े। वो छठा बंध स्थान अभी पांच प्रकृतियों का है। 96 पेज पर आते हैं। इन पूर्वोक्त नौ प्रकृतियों में से, नौ प्रकृतियों के नाम पहले बताए थे उन्होंने, उसमें से इन हास्यादि चार प्रकृतियों को कम कर देने पर अवशेष पांच प्रकृतियां शेष रहती है। यद्यपि प्रेक्षा पूर्वकारी अर्थात बुद्धि प्रधान शिष्यों के द्वारा अर्थापत्ति से शेष पांच प्रकृतियां जान ली गई है, तो भी शब्द नयानुसारी शिष्यों के अनुग्रह के लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं। यानी वो ज्ञान के द्वारा उसका अनुमान कर सकते हैं, फिर भी वो शब्दों में बताना किसी किसी को आवश्यक लगता है, तो उनके लिए भी यहाँ उन प्रकृतियों के नाम बताएंगे। चदु संजलनम पुरी सवेदो एदासिम पंचन्नम परिणम एकम्मी चेवट ठाणम बंधमानस। क्रोध आदि चारों संजुलन कषाय और पुरुष वेद इन पांचों प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। उस एक ही भाव में इस पद का अर्थ पांचों प्रकृति रूप संख्या में अथवा पांच प्रकृतियों के बंध योग्य परिणाम में ऐसा लेना चाहिए। शेष सूत्रार्थ सुगम है। वो शश हुआ उसको शेष करना, सु रस्व हुआ सूत्र दीर्घ करना, और सुगम सुदीर्घ हुआ उसको रस्व करना, सुगम है। उसमें करेक्शन किया होगा क्योंकि हमने उनको भेजा था सब करेक्टेड करके। अब वो किसके होता है बताएंगे। तम संजदस्य वह पांच प्रकृतिक छठा बंधस्थान संयत के होता है, क्योंकि संयत के सिवाय वो शिवाय नहीं, सिवाय मराठी में शिवाय कहते हो, हिंदी में सिवाय कहेंगे, यानी उनको छोड़कर अन्यत्र इस पांच प्रकृति रूप बंध स्थान का अभाव है। यानी यहाँ पर भी संयत कह दिया, परंतु हमें मालूम है ना ये पांच वाला किसको होता है, नवे गुणस्थान के पहले भाग में होता है, केवल पहले भाग में। विशेषार्थ लिखते है यहाँ पर, यद्यपि संयत सामान्य को ही इस बंध स्थान का स्वामी बतलाया गया है, तथापि उसका अभिप्राय अनिवृत्तिकरण संयत से ही है, तथा यही बात आगे कहे जाने वाले चार तीन दो और एक प्रकृतिक रूप बंध स्थानों के स्वामित्व में भी जानना चाहिए। आगे भी कहेंगे वो संयत के होता है, वे दूसरे भाग वाला तीसरे भाग वाला ऐसा उसमें होगा। 38 नंबर, तथ्य इमं चतुर्णम ठाणम पुरुष वेदम वज्ज। अब पांच प्रकृति का बताया था उन्होंने, अब उसमें से एक को माइनस कर देंगे, तो मोहनीय कर्म संबंधी उक्त दश बंध स्थानों में छठे बंध स्थान की पांच प्रकृतियों में से पुरुष वेद को छोड़कर यह चार प्रकृतिक प्रकृति यानी प्रकृति वाला सातवां बंध स्थान होता है। पूर्वोक्त सूत्रोक्त पांच प्रकृतियों में से, पूर्व सूत्रोक्त यानी पहले सूत्र में बताए हुए पांच प्रकृतियों में से, मैं बराबर करो, पुरुष वेद के घटा देने पर, यानी शुरुआत में क्या है एक वेद का उदय है और कोई संज्वलन एक का उदय है, परंतु बनता है पुरुष वेद और चारों संज्वलन, तो पांच में से एक को घटा दिया, पुरुष वेद को, अवशेष चार प्रकृतियां रहती है, यानी चार संज्वलन रहेगी। एक्चुअली ये बोल्ड हुआ ना एक लाइन, वो ऑर्डिनरी टाइप चाहिए क्योंकि उस सूत्र का नहीं है। 97 पेज पर आना। यद्यपि उन चारों प्रकृतियों के नाम अर्थापत्ति से प्रमाणानुसारी शिष्यों के द्वारा जान लिए गए हैं। अर्थापत्ति से प्रमाणानुसारी का अर्थ होता है जैसे वो बताया है ना, उसमें से वो ज्ञान के अनुसार जान लेते हैं उसको। तथापि शब्दानुसारी शिष्यों के अनुग्रहार्थ आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं, यानी शब्दों में उसको जानना चाहते हैं। ये चार प्रकृतियां यहाँ बताएंगे। अर्थापत्ति से प्रमाणानुसारी, यानी तो पदार्थों के वो ज्ञान के द्वारा जान लेते हैं ना, उन्हें उसमें से माइनस कर दिए तो कौन से रह गए? पहले वो प्रेक्षा पूर्वकारी ऐसा आया था, बुद्धि प्रधान शिष्य कहो या आप कहेंगे एक संक्षेप में जान लिया तो समझ लेते हैं, अनुमान ही है वो, यानी वो डायरेक्ट उसका पहले तो बताए थे ना इतने नाम, अभी उसमें से कौन से नहीं बंधेंगे। हाँ, अर्थापत्ति ने डायरेक्ट पदार्थों को जान ले रहे हैं वो। वो 39 नंबर ऊपर चदु संजलनम एदास्यम चदुन्नम पैडिनम एकम्मी चेवठानम बंधमानस। क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन और लोभ संज्वलन, इन चारों प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। यह सूत्र सुगम है। देखो यह पद्धति है, अनंतानुबंधी सबको एक साथ बताते हैं, अप्रत्याख्यान सबको एक साथ बताते हैं, प्रत्याख्यान भी एक साथ बताए, और संज्वलन कहने के लिए क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन और लोभ संज्वलन, क्योंकि वो बंध का उसका एक एक का बंध और उदय वो तो रुकते चला जाता है, इसलिए उसके एक एक को अलग अलग नाम देके उसका नाम बताते हैं। यह सूत्र सुगम है। तम संजदस्य, वह चार प्रकृतिक सातवां बंध स्थान संयत के होता है। यह सूत्र भी सुगम है, यानी नौवे गुणस्थान का द्वितीय भाग है। वो पांच प्रकृति वाला किसको था? संयुक्त को होता है, तो विषय हाँ नवे गुणस्थान का पहले भाग। इकतालीस नंबर का सूत्र। तथ्य इमं तिन्नम ठानम कोद संजलनम वज्ज। मुनि कर्म संबंधी उक्त दस बंध स्थानों में सप्तम बंध स्थान की चार प्रकृतियों में से क्रोध संज्वलन के छोड़कर या उसको छोड़कर यह तीन प्रकृतिक आठवां बंधस्थान होता है। चारों संज्वलन प्रकृतियों में से क्रोध संज्वलन के घटा देने पर अवशेष तीन प्रकृतियां रह जाती है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। तो कहते हैं मान संज्वलम, माया संज्वलम, लोभ संज्वलम, एदासीम तिन्नम पैडिनम एकम्मी चैव ठानम बंधमानस। मान संज्वलन, माया संज्वलन और लोभ संज्वलन, इन तीनों प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान होता है। यह सूत्र सुगम है। नाइन्टी एट नंबर के पेज पर आते हैं। वो किसके होता है बताएंगे। तम संजदस्य, वह तीन प्रकृतिक अष्टम बंध स्थान संयत के होता है। यह सूत्र भी सुगम है। लक्ष्मी बहन अभी संयत यानी नवे गुण स्थान का कौन सा भाग लेना? हाँ, तीसरा भाग। चवालीस सूत्र देखो भी। तथ्य इमं दोन्नम ठानम मान संजलनम वज्ज। मुनि कर्म संबंधी उक्त दस बंध स्थानों में अष्टम बंध स्थान की तीन प्रकृतियों में से मान संज्वलन को छोड़कर यह दो प्रकृतिक नौवा बंध स्थान होता है। अब बताएंगे वो कौन से, वो बता रहे माया संज्वलनम, लोभ संज्वलनम, एदासीम दोन्नम पैडिनम एकमी चेवठाणम बंधमानस। माया संज्वलन और लोभ संज्वलन, इन दोनों प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। तम संजदस, वह दो प्रकृति रूप नवम बंध स्थान संयत के होता है। अब ये संयत कहने से नवे गुणस्थान का चतुर्थ भाग। यानी वहां दो प्रकृतियों का बंध है। जाएगा नहीं, बंधेगा। देखो पहले भाग में एक है, क्या है वो बता। बंध किसका है? एक वेद का और चार कषाय का पहले भाग में। दूसरे भाग में अब क्रोध नहीं रहा। पहले में जाता है ऐसा नहीं, बंध विच्छित्ति कहने पर हम कहेंगे पहले होती है, पहले में होती है, परंतु पहले के अंत तक बंध रही है। दूसरे भाग में क्या बन रहा है? चार संज्वलन बन रहे हैं, क्योंकि स्थान वो कहलाएगा ना। तीसरे भाग में क्या बन रहे? तीन बन रहे, मान माया लोभ बन। तीसरे भाग में, चौथे भाग में माया और लोभ दो बन रहे हैं, और पांचवे भाग में अकेला लोभ बन देगा। तो अभी यहाँ जो संयत के होता है लिखा था ना 46 नंबर के सूत्र में, यानी नवे गुणस्थान के चौथे भाग की बात है ये। अब ये दो प्रकृति वाला बताया, अभी एक प्रकृति वाला बताएंगे। तथ्य इमम 21 से ठाणम माया संजलनम वंच। मोहनीय कर्म संबंधी उक्त 10 बंध स्थानों में नवम बंध स्थान की दो प्रकृतियों में से माया संज्वलन को स के ऊपर बिंदी लगाना। माया संज्वलन को छोड़कर यह एक प्रकृतिक दसवां बंध स्थान होता है। ये तो आसान है ना, नवे के अंत में। लोभ संज्वलन ऊपर ना, ये बता पढ़ा ना मैं सूत्र। लोभ संज्वलन 21 से पढ़ी है, एकमी चेवठाणम बंधमानस। लोभ संज्वलन, इस एक प्रकृति के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। तम संजदस, वह एक प्रकृतिक दसवां बंध स्थान संयत के होता है। अभी संयत के कहने से नवे गुणस्थान का पांचवा भाग। यानी अंतिम भाग, क्योंकि दसवें में उसको बंध रुक गया, अभी मोहनी का बंध पूरा रुक गया। यह सूत्र सुगम है। यानी अभी तक हमने कौन कौन से बंध स्थान, कौन कौन से कर्मों के देखे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, चार देखे ना। अब आगे देखते हैं। आउअस कम्मस चत्तारी पयडियो। आयु कर्म की चार प्रकृतियां होती है, उसका बंध स्थान में कितना हो गया, कितने प्रकृतियों का बंध होगा? एट ए टाइम तो एक ही बनते हैं, जिसको कोई आयु बंधेगी तो एक ही प्रकृति बंधेगी। हाँ, यह सूत्र संग्रहने वाले जीवों का अनुग्रहकारी सूत्र है, क्योंकि आगे कहे जाने वाले समस्त अर्थ को अवगाहन करके अर्थात अपने अंतर्गत करके अवस्थित है। ये कौन सी चार प्रकृतियां वो अभी बताएंगे, वो तो उसी में गर्वित हो गई। आयु की चार कहने से वो कौन सी आयु चार होती है वो हमको मालूम है, फिर भी वो अलग से बताएंगे। हाँ, नरकायु मनुष्य तिरंचवायु। हाँ, आयु लगाना उसके आगे। 51 नंबर का सूत्र। निराउम तिरिखाउम मनुषाउम देवाउम चेदी। नारकायु तिर्यगायु मनुष्यायु और देवायु, ये आयु कर्म की चार प्रकृतियां हैं। यह सूत्र निरर्थक नहीं है, क्योंकि फिर पूछेगा शिष्य, पहले मालूम थे ना, पहले ये सारे बताए थे ना, अब दोबारा क्यों कहते हैं? तो कहते क्योंकि वह विस्मरणशील शिष्यों के स्मरणार्थ बनाया गया है। कितने बार, एक बार बता के छोड़ देते हैं तो बात तभी समझ में आती, बाद में याद नहीं रहती। हाँ, इसीलिए जो बारंबार बारंबार उसको जैसे स्कूल में कैसे टीचिंग होती है, बारंबार एक ही बात पढ़ाई जाती है तो वो हमारी याद आती है। फिर जम तम निरयावम कम्मम बंधमानस। आयु कर्म की चार प्रकृतियों में जो नारकायु कर्म है उसके बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। अब ये पूछेंगे कौन से गुणस्थान वाले नारकायु का बंध करते हैं, मात्र पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान में वो नर गति नरकायु कुछ नहीं बन, भाव भाव नारकायु बंध करने योग्य भाव इतना ही लेना, अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग भाव में हो गए उसके। इस सूत्र में एक में ही अवस्थान होता है इस वाक्य का अध्याहार करना चाहिए, वो मान लेना उसमें एक कमी ठानम लिया नहीं, वो वहां है ऐसा समझना, अन्यथा इस सूत्र के निष्क्रियता की आपत्ति प्राप्त होती है। जब बंधन करने वाले जीव का भाव होता है तो क्या होता है, तो एक ही भाव में अवस्थान होता है, ये समझ लेना चाहिए। शंका, नारकायु के बंध करने वाले जीव का कहाँ पर अवस्थान होता है, किसमें वो ये फिक्स है, तो कहते एक संख्या में, एक ही का बंध करने वाले ही अपेक्षा वहां उसका अवस्थान है उसी भाव में, अथवा नारकायु के बंध योग्य परिणाम में उसका अवस्थान होता है, यानी जीव के जो परिणाम है उसमें ये एक नारकायु का स्थान है। शंका, यहाँ पर वेदिनी कर्म के समान एक में ही अवस्थान होता है इतना वाक्य आचार्य ने सूत्र में किस लिए नहीं कहा, सूत्र में बता देते ना एक में ही अवस्थान होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं क्योंकि संख्या की अपेक्षा चारों आयु कर्म की प्रकृतियों का एक में ही अवस्थान होता है, किंतु परिणाम की अपेक्षा आयु कर्म के चार स्थान होते हैं। यानी आयु कर्म इन सच कहेंगे तो उसके चार अलग अलग होंगे परिणामों की अपेक्षा, क्योंकि नरकायु बांधने के परिणाम जुदे है, देवायु बांधने के जुदे, सबके जुदे जुदे। यह बतलाने के लिए सूत्र में उक्त प्रकार का वाक्य आचार्य ने नहीं कहा, क्योंकि वो भाव जुदे जुदे है ना, इससे नरकायु का अपना एक भाव में, देवायु का अपने एक भाव में अवस्थान होगा। हाँ, वो बंध योग्य परिणाम जीव का अपने, हाँ, इसलिए उसमें उसका अवस्थान होता है। अब वो किसके होता है वो बता रहे 100 नंबर के पृष्ठ पर। तम मिथ्या दिष्टिस, वह बंध स्थान मिथ्या दृष्टि के होता है, यानी पहले गुणस्थान में नरकायु बन सकती, वो दूसरे आयु नहीं बांधते वो बात नहीं है, पर नरकायु किसके बंधेगी, पहले वाले को ही बंधेगी। वह अर्थात नारकायु के बंध वाला एक प्राकृतिक बंध स्थान मिथ्या दृष्टि जीव के ही होता है, क्योंकि मिथ्या तो कर्म के उदय के बिना नारकायु का बंध नहीं होता, यानी मिथ्या दृष्टि उसको बांधता है, ये कहना चाहते हैं। जम तम तिरिखा उम कम्मम बंध मानस, जो तिरियकायु कर्म है उसका बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। इस सूत्र का अर्थ भी पूर्व सूत्र के समान कहना चाहिए। कौन सा भाव, तिर्यकायु बांधने योग्य भाव, वो तिर्यकायु किस किस के बनती है, पहले और दूसरे गुणस्थान वालों के बंधे। अब वो किसके होता है यहाँ बता रहे, तब मिच्छा दिट्ठी स वा सासदन सम्मा दिट्ठी स वा, वह तिर्यकायु का बंध रूप एक प्राकृतिक स्थान मिथ्या दृष्टि और सासादन समय दृष्टि के होता है। वह बंध स्थान इन सूत्रोक्त दोनों गुणस्थानवर्ती जीवों के होता है, क्योंकि इन दोनों गुणस्थानों में तिर्यकायु के बांधने योग्य परिणाम पाए जाते हैं। हाँ, अब मनुष्यायु की बात करेंगे। जम तम मनुषावम कम्मम बंधमानस, जो मनुष्यायु कर्म है उसका बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। यह सूत्र सुगम है। अब वो किसके बनती है वो बताएंगे। तम मिच्छा दिठिस वा शासन सम्मादिठिस वा असंयत सम्मादिठिस वा वह मनुष्यायु के बंधरूप एक प्राकृतिक स्थान मिथ्या दृष्टि शासन सम्य दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि के होता है। देखो अभी जो असंयत सम्य दृष्टि को मनुष्यायु का बंध होता है ये कहाँ है, वो कौन से गति वालों के होगा, देव और नर के। सम्य दृष्टि मनुष्य नहीं बांधेगा मनुष्यायु। मैंने बोला कौन सी गति की अपेक्षा ये बात बताई होगी, चौथे वाले की बात, कि चौथे वाला मनुष्य तो मनुष्यायु नहीं बांधता, वो तो देवायु बांधेगा। समय दृष्टि अगर आयु बांधता है तो देवायु का बंध करेगा, और मनुष्यायु समय दृष्टि हो है और मनुष्यायु का बंध करने वाला है तो ये देव है या नारकी है। फिर वो बात नहीं, उन्होंने इन जनरल बात पहले बता, किसको होता है, पहले को होता है, दूसरे वाले को होता है, चौथे वाले को हो सकता है। और आगे जो पांचवा वगैरह आ गए तो देवायु का ही बंध है उसके तो। हाँ, तीन जो हो या कोई हो, 101 नंबर पर आते हैं। क्योंकि संहिता संहित आदि ऊपर के गुण स्थानों में मनुष्यायु के बांधने योग्य परिणामों का अभाव है। सम्यक दृष्टि गुण स्थान में चारों ही आयु कर्म बंध रूप से नहीं है ऐसा अर्थ जानना चाहिए। हमने पहले देखा था कि तीसरे गुण स्थान में आयु का बंधन नहीं होता। इसका कारण यह है कि उस गुण स्थान में एक भी आयु कर्म के बंध का स्वामित्व नहीं बतलाया है। जम तम देवाउम कम्मम बंध मानस, जो देवायु कर्म है उसे बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान होता है। यह सूत्र सुगम है। अब देव स्वयं देवायु का बंध नहीं करेंगे, ख्याल में आई बात, उनके होता ही नहीं। वह देवायु का बंध रूप एक प्राकृतिक स्थान मिथ्या दृष्टि सांसाधन सम्य दृष्टि असंयत सम्य दृष्टि संयता संयत और संयत के होता है। यह सूत्र भी सुगम है। यानी देवायु का बंध करने वाले कौन है, मनुष्य या तिर्यंच। तीसरे में वायु का बंध नहीं होता, इसलिए पहला लिया, दूसरा लिया, चौथा, पांचवा और संयत लिया। संयत में छठा और सातवा लेना। ऊपर के गुणस्थानों में भी आयु का बंध नहीं होता। छठे ने जिसका आयु का बंध शुरू किया है वो सातवें में भी उसका बांधता रहता है, परंतु ऊपर के गुणस्थानों में आयु बंध होता नहीं है। यह सूत्र भी सुगम है। तो ये अभी तक हमने आयु के देखे चार। पहले मोहिनी के कितने देखे थे स्थान, 10 देखे थे, 22 वाला, 21 वाला वगैरह। फिर अभी आयु का, हाँ, चार प्रकृतियां परंतु एक एक बंध स्थान है एक का। अब यहाँ नाम कर्म के बताएंगे। नाम कर्म के वेरिएशंस है। देखो अभी हम पहले सूत्र पढ़ेंगे। यानी हमने इतने नाम कर्म की 93 प्रकृतियां देखी, पर एट ए टाइम इतनी नहीं बनती है, तो उसके बंध स्थान बताएं। यानी वो मेरी भाषा में उसका पैकेज होगा ना, कितने प्रकृतियां बनती है, किस पर्याय संबंधी बनती है, वो सब बताएंगे अभी। नामस्य कम्मस्य अठठाणानि, जैसे मुनि के 10 बंध स्थान देखे वैसे यहाँ पर 8 ही बंध स्थान होते हैं। इकतीसाए तीसाए एगुण तीसाए अठवीसाए छब्बीसाए पणुवीसाए तेवीसाए 21 से ठाणम छेदी, यानी एक का भी बंध स्थान है। पहले मैक्सिमम वाला बताया, 31 वाला, 30 वाला, 29 वाला, 28 वाला, 26, 25, 23 का और एक का। लक्ष्मीबेन एक का कौन सा है, एक प्रकृति कौन सी बनती है, वही कौन सी आपको मालूम नहीं होगा, यश कीर्ति बनती है, क्योंकि बाकी की बंध विचित्ति होती है आठवें में। हाँ, आपका वो अभ्यास नहीं, इसलिए आपको नहीं पूछा हमने। देखो यहाँ पढ़ा है, पढ़ेंगे नाम कर्म के 8 बंध स्थान है। 31 प्रकृतिक, वो कौन कौन सा है, किसको बनते हैं वो बताएंगे। 30 प्रकृतिक, 29 प्रकृतिक, 28 प्रकृतिक, 26 प्रकृतिक, 25 प्रकृतिक, 23 प्रकृतिक और 1 प्रकृतिक बंध स्थान है। यह संग्रह नयाश्रित सूत्र है क्योंकि वह बीज पद स्वरूप है। संग्रह ने सबको इकट्ठा करके बताया, सभी स्थानों के नाम उन्होंने वहां बताए। शंका, आगे कहे जाने वाले सर्व अर्थों का ज्ञान इस सूत्र से कैसे होता है। यहाँ तो केवल संख्या बताइए तो आगे तो नाम भी बताएंगे उसके। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इस सूत्र के ऊपर उसके अंतर्निहित सर्व अर्थ का प्ररूपण करने वाले आचार्यों के व्याख्यान से उन अर्थों को जानने में कोई विरोध नहीं, अर्थ है नहीं जो सब्जेक्ट है उसको जानने में कोई विरोध नहीं है। अब विशेष रुचि वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। एक होता है संक्षेप से जान लेने वाले और एक विशेष विस्तार से बताकर फिर उसको रुचि हो जाती है उसकी। ये सब कर्मों के नाम बताएंगे अभी। 28 वाला बंध स्थान बताएंगे। 28 प्रकृति का बंध स्थान किसके होता है, कौन सी गति के साथ बनता है मालूम, याद है कि भूल गए। देवगति और नरक गति के साथ बनता है ये 28 वाला स्थान, अब यहाँ बताएंगे। तथ्य इमम 28 ठाणम निरय गति पंचिंद्रिय जादि वेयुवीय तेजा कम्मय शरीरम हुंड संठानम वेयुवीय, यह रह गया वेयुवीय शरीर अंगोवंगम, वैकृत शरीर अंगोपांग, पहले वैकृत तेजस कर्म शरीर जुदे लिए उसका अंगोपांग नाम का अलग लिया। वर्ण गंध रस फासम निरे गई पायुज्ञान पूर्वी अगुरु अलहु उवघाद परघाद उत्साहम अपसत्थ विहाय गई, नारकी है ना इसलिए अप्रशस्त विहाय गति लिया। तस बांदर पज्जत पत्ते शरीर अथिर असुह दुहव दुस्सर अनादेज अजस कित्ति निम्न नामम एदासीम 28 पयडीनम एकमी चेव ठाणम। देखो क्या कहते हैं, नाम कर्म के उक्त 8 बंध स्थानों में से यह 28 प्रकृतिक बंध स्थान है। नरक गति पंचेंद्रिय जाति वैकृत शरीर तेजस शरीर कारमान शरीर हुंड संस्थान वैकृत शरीर अंगोपांग वर्ण गंध रस स्पर्श नरक गति प्राज्ञान पूर्वी अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास अप्रशस्त विहार गति त्रस बांदर पर्याप्त प्रत्येक शरीर अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय अयशस कीर्ति और निर्माण नाम, इन 28 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। अब शंकाकार पूछ रहे हैं कि उन्होंने पंचेंद्रीय जाति इतना ही बताया, तो कहते हैं नरक गति के साथ एकेंद्रीय द्विंद्रीय तीनद्रीय और चतुरिंद्रीय जाति नाम वाली प्रकृतियां क्यों नहीं बनती। वहां कहते हैं क्योंकि नरक गति के बंध के साथ इन द्विंद्रीय जाति आदि प्रकृतियों के बंधने की प्रवृत्ति का विरोध है। शंका, इन प्रकृतियों के सत्व की एक साथ एक जीव में वृत्ति देखी जाती है इसलिए बंध का विरोध नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं, किसी जीव की सत्ता में तो ये प्रकृतियां बंधी हुई पड़ी है, एक ही जीव की सत्ता में एकेंद्रिय द्विंद्रिय आदि पंचेंद्रिय तक के सभी जाति नाम कर्म पड़े हैं। समाधान, इनके ना नारकियों के बंध है, पर जिस समय वो नरक गति बन रही है तब ये सारे अप्रशस्त बनती है। हाँ, पर गति बनते तो नाम कर्म की यही बनती है, प्रशस्त में क्या बंधेगी, वो साता साता वाली बन सकती है। ये नक्की है, बस इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अभी इस समय नहीं बंधा, नाम कर्म में नहीं बंधा, केवल वो साता असाते का डिफरेंस होगा। अपन जिस समय आयु का बंध रही वहां असाता ही बंध रही, फिर नरक में जाने पर उस समय उनको बंधेगी। फिर नरक नारकी जीव को साता असात एक है, और वो तो तीन जो मनुष्य संबंधी नाम कर्म बांधेगा। नरक गति जिस समय बन रही है तस उस समय की बात है। हाँ देखो ना, अस्थिर अशुभ वगैरह सब लिए। हाँ तो यहाँ पूछा था उन शंका करने, तो सत्ता तो एक साथ देखने में आती है इन प्रकृतियों की, उसका समाधान 103 पृष्ठ पर। सत्व की अपेक्षा, सत्व इन्हें बंधी हुई जो सत्ता में पड़ी हुई उसको सत्व कहते हैं। सत्व की अपेक्षा उक्त प्रकृतियों के एक साथ रहने का विरोध भले ही न हो, क्योंकि वैसा आगम स्वीकार करता है, किंतु उन प्रकृतियों का एक साथ बंधने का विरोध है, क्योंकि उस प्रकार के उपदेश का नहीं पाए, उपदेश नहीं पाया जाता है। कान निकाल दो। उस प्रकार का उपदेश नहीं पाया जाता है, और सत्व में विरोध का अभाव देखकर सत्व में विरोध का अभाव देखकर बंध में भी उनका एक साथ अविरोध बंध हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी सत्व में एक साथ वो पड़ी है इसलिए बनते समय भी एक साथ बनती होगी, ऐसा नहीं है ये कहना चाहते, क्योंकि बंध और सत्व में एकत्व का विरोध है, अर्थात बंध और सत्व ये दोनों एक वस्तु नहीं है। नरक गति नामक नाम कर्म की प्रकृति के साथ जिन प्रकृतियों का युगपत उदय होता है, वे प्रकृतियां नरक गति नाम प्रकृति के साथ बंध को प्राप्त होती है ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, किंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसी अवस्था में ध्रुव उदय होने से नरक गति नाम प्रकृति के साथ उदय में आने वाले स्थिर और शुभ नाम कर्मों का नरक गति के साथ बंध का प्रसंग आता है। मैंने बोला था ना, उसका तो उदय तो होगा, उसके ध्रुव उदय होते हैं, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ वो तो ध्रुव उदयी प्रकृतियां होती है, ध्रुवोदयी कहते हैं। जैसे ध्रुव बंदी होती है ना कुछ, हमने नाम कर्म की तेजस कारमान वर्ण आदि ये सब ध्रुव बंदी है, वो सबको बंधेगी, परंतु ध्रुव उदयी में वो उसको लेना स्थिर अस्थिर, उसका उदय तो दोनों का एट ए टाइम पाया जाता है, कभी स्थिर का कभी अस्थिर का ऐसा नहीं है। परंतु क्या कह रहे थे को? फिर मैं ये वाक्य पढ़ती हूँ। मैंने कितने आचार्यों का मत क्या है कि नरक गति के साथ जिसका उदय है, नरक गति नाम कर्म के साथ उदय ने जो नारकियों को जो प्रकृतियों का उदय हो सकता है, उनके सिर अस्थिर दोनों का उदय है, क्योंकि वो ध्रुवोदयी प्रकृति है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि नरक गति नामक नाम प्रकृति के उदय के साथ जिन प्रकृति के साथ जिन प्रकृतियों का युगपत उदय होता है, वे प्रकृतियां नरक गति नाम प्रकृति के साथ बंध को प्राप्त होती है ऐसा कितने आचार्य कहते हैं। जब जब नरक गति बंधेगी वो सभी बंधेगी ऐसा उनका कहना है, किंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसी अवस्था में ध्रुव उदय होने से नरक गति नाम प्रकृति के साथ उदय में आने वाले स्थिर और शुभ नाम कर्मों का नरक गति के साथ बंध का प्रसंग आता है। यानी नारकियों के उसका उदय है तो उसका बंध भी मानना पड़ेगा ये कहना चाहते हैं, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि शुभ प्रकृतियों का अशुभ प्रकृतियों के साथ बंध का अभाव है। एट ए टाइम नहीं बंधेगी वो, स्थिर स्थिर एट ए टाइम उदय रूप हो सकती है। अब हम बाकी जहाँ देवादि का बंध है, देवगति का वगैरह, वहां भी कहते समय वो कहेंगे किसकी का, यानी किसमें वो ऑप्शन हो सकता है उसको मैं ले लेंगे। यानी अभी तो वो अस्थिर वगैरह वही बंध रही है, परंतु देव गति की या मनुष्य गति के साथ सिर अस्थिर वो उसका ऑप्शन होगा, शुभ अशुभ उसका ऑप्शन हो सकता है। इसलिए नरगति के साथ जिन प्रकृतियों का उदय नहीं है, एकांत से उनका बंध नहीं ही होता है, किंतु जिन प्रकृतियों का एक साथ उदय होता है उनका नरगति के साथ कितनी प्रकृतियों का बंध होता है और कितनी प्रकृतियों का बंधन नहीं होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भी नरगति के बंध के साथ विरुद्ध पड़ने वाली बंध प्रकृतियों की प्ररूपणा करना चाहिए, यानी जो नरगति के साथ बनती ही नहीं है उसकी भी ऐसी प्ररूपणा। द्विकेंद्रीय द्विंद्रीय तीन्द्रीय जाति बनती नहीं उनकी, वही प्रश्न पूछा था। अभी 28 जो गिनाई ना उन्होंने, निरय गयम पंचेन्द्रिय पज्जत संयुक्तम बंध मानस तम मिच्छा दिठिस, वह 28 प्रकृतिक बंध स्थान पंचेन्द्रिय जाति और पर्याप्त नाम कर्म से संयुक्त नरक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि के होता है। यानी नरक गति जब बनती है तो पंचेन्द्रिय जाति ही बनती है, पर्याप्त ही का बंध है, क्योंकि नरक में कोई अपर्याप्त तो उसके साथ नहीं जन्मता। 104 नंबर पर आते हैं, वह बंध स्थान किसके होता है, ऐसा पूछने पर उत्तर दिया जाता है कि वह बंध स्थान मिथ्या दृष्टि जीव के होता है, क्योंकि ऊपर के गुणस्थानों में नरक गति बनती नहीं है। यानी ये 23 वाला बंध स्थान जो नरक गति के साथ वाला है वो मिथ्या दृष्टि के बनता है, क्योंकि उपरम गुणस्थानों में नरक गति के बंध का अभाव है। अच्छा, इन्होंने गति के साथ की बात उसके अलग अलग किए, यानी 28 के बंध स्थान देवगति के साथ भी होता है, परंतु उन्होंने गति और उसके पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे के साथ कौन सा बंध स्थान है वो बात की। अभी नरक गति का बंध स्थान एक ही 28 वाला और उसकी प्रकृति अभी फिक्स है, उसमें कोई भंग नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अब तिरेंच गति के साथ कौन कौन से बंध स्थान होते हैं, यानी तिरेंच गति बांध रहा है तो उसमें से कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो तिरेंच गति बांध रहा है, पंच जाति एकेंद्रिय से पंचेन्द्रिय तक कुछ भी बन सकते हैं, एकेंद्रिय होंगे तो सूक्ष्म बादर का भी बंध है और कहीं का भी किसी का होगा तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों के बंध हो सकते हैं, तो वेरिएशन बहुत है, तो यहाँ बताएंगे उसको। 63 में तिरिक्ख गति नामाए पंच ठाणानी तीसाए एगुण तीसाए छब्बीसाए पणुवीसाए तेविसाए ठाणम चेदे। तिर्यंच गति नाम कर्म के 5 बंध स्थान है, 30 प्रकृतिक यानी 30 प्रकृतियों वाला, 29 प्रकृतिक, 26 प्रकृतिक, 25 प्रकृतिक और 23 प्रकृतिक संबंधी बंध स्थान। लक्ष्मी जी आपको याद है ये किस किस के होगा? देखो देखो मैं बताती हूँ सामान्य से, जो द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेन्द्रिय पर्याप्तों का बंध कर रहा है उसके 29 वाला स्थान होता है, और उसके साथ उद्योत अगर बनती है तो 30 वाला स्थान होता है। एक बात तो ये हो गई, यानी 30 और 29 बता दी हमने, 26 वाला किस कौन सा स्थान होता है, द्विंद्रियादि अपर्याप्तों का होगा, एकेंद्रियों का भी होगा, 26 वाला आताप उद्योत के साथ वो भी हो सकता है, ये मनुष्य की भी बात हो सकती है, पर यहाँ तिरेंच की बात उठाई इसलिए तिरेंच संबंधी कहेंगे हम। 25 प्रकृति वाला स्थान एकेंद्रिय पर्याप्तों का होगा या द्विंद्रियादि अपर्याप्तों का होगा, 25 वाला, 23 वाला एकेंद्रिय अपर्याप्त का होगा भले वो सूक्ष्म होगा या बादर होगा, अभी हम यहाँ बढ़ताएंगे वो आप। हाँ देखो 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 30 प्रकृति है ना, उद्योत सहित द्विंद्रियादि पर्याप्त, यानी द्विंद्रियादि पर्याप्त प्लस उद्योत, ये हो गया 30 प्रकृति वाला, 29 वाला द्विंद्रियादि पर्याप्त, द्विंद्रियादि नहीं, द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय, अब 26 वाला एक केंद्रीय प्लस आतप उद्योत होगा, ये पर्याप्त का ही होता है ना, एक केंद्रीय पर्याप्त का ही होता है। हाँ आप किसी को आतप किसी को उद्योत इस तरह से, नहीं नहीं पर्याप्त 26 वाला एक केंद्रीय पर्याप्त आतप या उद्योत सहित, या नहीं वही एक है 26 में, वही एक ही है, एक ही है। 25 वाला जो है ना 25 में लेना एक केंद्रीय पर्याप्त या द्विंद्रियादि अपर्याप्त, हाँ समय ज्ञान चंद्री का मिथ्या, और 23 में एक केंद्रीय अपर्याप्त। अब अपर्याप्तों में बादल या सूक्ष्म का भंग होगा वहां पर, हाँ यहां तिर्यक गति नामा नाम कर्म की प्रकृति के इस प्रकार संबंध करना चाहिए, यानी उसके 5 बंध स्थान बताए। यह संग्रह नयाश्रित सूत्र है क्योंकि आगे कहे जाने वाले सर्व अर्थ इसमें संभव है, यानी वो कौन कौन सी है प्रकृतियां वो सब यहाँ बताने जा रहे हैं, यानी वो 30 वाला कौन सा स्थान है, 29 वाला कौन सा स्थान है, वो सब अभी यहाँ बताने जा रहे हैं, वो हम कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी एक भी होगा नहीं पूरा पढ़ के, यही रुकते हैं हम। हाँ एक ही 28 वाला एक ही है, नर गति वाला एक ही बंध स्थान है, तिर्यंच गति बांधने वाले के ये 5 बंध स्थान है अलग अलग। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तकनम्।